बनाना चाहिए। जैसे कोई भगवान की मूर्ति है, उसके माँ हम ये भाव करते हैं कि ये भगवान है, तो हमारे लिए वो भगवान ही है। और जो मूर्ति में, शिव की मूर्ति में ये भाव करते हैं कि ये पत्थर है, तो उनके लिए वो पत्थर ही है। तो जो कुछ ऐसा भाव ही है, तो भाव अपना उच्च से उच्च करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक ही अनहद शब्द होता रहता है। रात्रि के समय के बीच के माँ दोनों कानों को बंद कर करके हम एक प्रकार से सुनना चाहें, तो हमारे कानों के बीच के माँ प्रथम तो ऐसा शब्द सुनाई देता है कि मानो कोई घूं घूं बोलता है। उसके बाद के बीच के माँ ऐसा शब्द सुनाई देता है कि मानो कोई इंजन की आवाज आती हो। फिर खूब ध्यान देकर के सुनने से ऐसा मालूम देता है कि जैसे कोई घड़ी का खटका हो। फिर उस घड़ी के खटके के साथ के बीच के माँ हम जैसा उसमें भाव करें, वैसा ही हमको सुनाई देने लग जाता है। जैसे हम कभी रेल के माँ चलते हैं और रेल के पहियों से शब्द सुनाई देता है, और उसमें हम भगवान के नाम का शब्द जोड़ देते हैं, तो वो भगवान का नाम ही हमारे को सुनाई देता है। तो हमारे शरीर के बीच के माँ समझो कि स्वाभाविक ही एक मशीन सी चलती है। हर वक्त हमारे शरीर के बीच के माँ समझो कि एक प्रकार का शब्द जो है सो सुनाई देता है। वो कब देता है कि या तो रात्रि के समय के बीच के माँ हम कानों को बंद कर लेते हैं, या कोई हम साधन के द्वारा एक प्रकार से अनर्थ शब्द के सुनने की रीति के अनुसार हम अभ्यास करते हैं। तो ये स्वाभाविक ही एक प्रकार से जो शब्द सुनाई देता है, जैसे गंगा बहती है और उस गंगा से शब्द सुनाई देता है, तो उसमें हम ये भावना कर ले कि जैसे कोई वेद की ध्वनि हो रही है, तो हमारे को वेद की ध्वनि की माफक वो गंगा का शब्द सुनाई देने लगेगा। इसी प्रकार से हम कानों के माँ जो शब्द सुनाई देता है, और उसके साथ के बीच के माँ हम एक प्रकार से ऐसा भाव कर ले इससे राम 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 ऐसा उच्चारण होता है, तो हमारे को वो राम राम सुनेगा। हम उसमें ऐसा भाव कर लें कि नहीं या ओम 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 ये सुनाई देता है, तो हमको ओम की आवाज सुनेगी। हम उसके साथ में ये भाव कर ले कि ये शब्द जो तो शिव 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 बोलता है, तो इस रूप में हमको शिव का शब्द सुनाई देने लगेगा। चाहे ओम हो तो परमात्मा का नाम है, शिव हो तो परमात्मा का नाम है, राम है तो परमात्मा का नाम है। परमात्मा के बहुत से नाम है, उनके माँ ये सब परमात्मा के ही नाम है। तो हम उसके माँ परमात्मा के नाम की भावना कर ले तो हमारा मन उसमें स्वाभाविक ही लग जाता है। ये बात हम लोगों ने समझो कि इजमा करके देखी है, और आप लोग भी इसको देख सकते हैं। ये जो हमारे शरीर के माँ जो शब्द है वो स्वाभाविक ही होता है, किंतु एक प्रकार से कान बंद के बिना सुनाई नहीं देता। और किसी के आवाज स्वाभाविक जोर से होती है, उनको बिना कान बंद किए भी वो शब्द है तो सुनाई देता है। तो समझो कि उस शब्द के साथ के वहां हम भगवान के नाम का प्रयोग कर देवे तो ठीक हमारे को भगवान के भगवान का नाम सुनेगा तो वो हमारे पास में जो ऐसा जो एक समझो कि साधन है ये बड़े उच्च कोटि का साधन है इसलिए भगवान की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाती है। भगवान के नाम का जो जप है वो हम अनंत शब्द के द्वारा सुने तो उसमें मन लग जाता है और सुनने के वक्त में बड़ा आनंद आता है और बहुत शांति मिलती है। मानो हमारे शरीर के वास्तव में सुन भगवान ही एक प्रकार से आपका नाम बोल रहे हैं या यूं समझो कि हमारे शरीर के मां स्वतः ही वो आवाज आ रही है जो भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। ये अजपा जाप भी है इसमें हम जप तो करते नहीं वो अपने आप से ही जप हो रहा है। जैसे सोम मंत्र के बीच के वहां भावना करी जाती है सो हम एक प्रकार से थी वो एक ब्रह्म के नाम के साथ में उसका शब्द जोड़ देते हैं श्वास के साथ के वहां वो जिस प्रकार से थी वो अनद शब्द भी है। जैसे ये अजपा जाप का मतलब ये है कि जपना न पड़े और अपने आप से आप ही जप हुए उसका नाम अजपा जाप है। तो ये श्वास जो हमारा बराबर चलता है और इसके द्वारा एक प्रकार से थी हम ये भावना करने में कि हमारे श्वास के द्वारा जो है सोहम ये जप हो रहा है कि सोहम ये जो जप हो रहा है ये जिस प्रकार से थी अजपा जाप है इसी प्रकार से थी वो भी अजपा जाप है जो कान के बीच के मां ध्वनि सुनाई दे रही है। हम जो प्रयत्न करके जिस नाम का उच्चारण लेते हैं वो हमारा किया हुआ जप है वो अजपा जाप नहीं है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के भीतर के बीच के वहां समझो कि जैसे नाड़ी चलती है एक हमारे हाथ के वहां जो नाड़ी चलती है और उसको देखकर कहा जाता है कि इस तरह के वहां नाड़ी के बीच या नाड़ी के खटके समझो कि 70 बेहतर है। तो यह जो नाड़ी चलती है इसी प्रकार की इसी नाड़ी से जैन रख करके हमारे हृदय के वहां नाड़ी चलती है हमारे प्रकुटी के वहां नाड़ी चलती है हमारे मस्तक में नाड़ी चलती है कंठों में चलती है। ये जो हमारे शरीर के मां जो योग शास्त्र में जो 6 चक्कर बतलाए गए हैं उन प्रत्येक चक्कर के साथ में उस नाड़ी का संबंध है। प्रथम उपनिषद के बीच के मां ये बात दिखलाई गई है कि हृदय से लेकर के मस्तक तक सुखमना नाम की एक नाड़ी है और उस नाड़ी से सबका जैन है और उस नाड़ी के बीच के मां हम भावना करें तो उसके मां हमको वैसी प्रतीति होने लग जाती है। यदि भगवान का हम ध्यान करें कि हमारे हृदय देश के मां जो कैसी एक नाड़ी है कि वो एक प्रकार से थी उस नाड़ी का नाम ज्योतिषमती है विशोका ज्योतिषमती। विशोका का मतलब है कि शोक करके रहित कर देती है शोक का अभाव क्योंकि जहां आनंद होता है वहां फिर शोक नहीं रहता तो वो समझो कि और ज्योतिषमती का मतलब है कि समझो कि वो आपने ज्योतिष स्वरूप तो परमात्मा का स्वरूप है तो ज्योतिष स्वरूप है और परमात्मा का स्वरूप आनंदमय है वहां शोक का अत्यंत अभाव है। तो हम ऐसा भाव करें कि हमारे हृदय के बीच के मां जो नाड़ी है उसमें आनंदमय समझो कि चेतन स्वरूप परमात्मा विराजमान हो रहे हैं इसीलिए वो नाड़ी का नाम भी विशोका और समझो कि ज्योतिषमति हो गया। तो वो नाड़ी है वो एक प्रकार से उसमें परमात्मा विराजमान हो रहे हैं वो परमात्मा का निर्गुण निराकार जो स्वरूप है वो हमारे सभी शरीर के मां समान भाव से है किंतु हृदय के मां उसकी उपलब्धि होने के कारण उसकी विशेषता बतलाई गई है। इसलिए शास्त्रों में यह बात बतलाई कि सर्वस्य दान हृदय सन्निविष्टो भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय के मां स्थित हूँ
ईश्वर से भूतानाम हृदय से अर्जुन स्थिति हे अर्जुन, ईश्वर जो है भूत प्राणियों के हृदय के महत्व स्थित है, तो हृदय की विशेषता बतलाई गई। जैसे सूर्य का प्रकाश सारी दुनिया के वहाँ समान भाव से है, किंतु जो सीता जो है आईना जिसको हम लोग दर्पण कहते हैं, तो उसमें अपने सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, सूर्य का जैसा सूर्य उसके वहाँ दिखता है, किंतु कांच के बीच के वहाँ या कोई द्वार के वहाँ उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता। तो ख्याल करना चाहिए जो आईना है वो भी एक प्रकार से पार्थिव चीज है, और द्वार है वो भी पार्थिव चीज है, और कांच है वो भी पार्थिव चीज है, किंतु उज्जवल न होने के कारण से उसे की प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं होती, और आईने के माँ होती है वो उज्जवल होने के कारण से। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है इसमें जो अंतःकरण है वो उज्जवल है, इस वास्ते उसके बीच के माँ भगवान का प्रतिबिंब पड़ता है, दिखता है, और सारे शरीर के माँ ही भगवान का प्रभाव पड़ता है, किंतु समान होते हुए भी उसके वहाँ विशेषता है। ताकि वहाँ बतलाया है कि सेतु और नैमे द्वेशो से न पूजिए, ये भजन की तू मांग भक्त्या मई ते तेसु चाप हम, कि मैं सब भूतों के वहाँ समान भाव से स्थित हूँ, न तो कोई मेरे प्रिय है और न कोई मेरे अप्रिय है, और मैं सब के वहाँ समान भाव से हूँ, किंतु हृदय के माँ प्रत्यक्ष की माँ बस, और उसके हृदय के माँ मैं हूँ। तो ये विशेष बात बतलाई कि सारे भूतों में सम होते हुए भी, और समझो कि जो मेरे को भजता है उसके हृदय के माँ मैं विशेष रूप से हूँ। इसी प्रकार से थी सारे शरीर के माँ समान भाव से परमात्मा का समझो कि स्वरूप रहते हुए भी अंतकरण के माँ उसकी विशेषता बतलाई गई है। जैसे सूर्य का प्रकाश सारी दुनिया में समान भाव से रहते हुए भी और आईने के बीच के माँ उसकी विशेषता बतलाई गई है। कोई कोई आईना तो ऐसा होता है सूर्य की रोशनी को आकर्षण करके समझो कपड़े को और रुई आदि जो है चूल्हे इसको जला देता है, उसको जला देता है, तो ये उस आईने की विशेषता है। इसी प्रकार से जिसका अंतःकरण शुद्ध और साफ होता है और जिसके अंतःकरण के वहाँ समझो कि आपने श्रद्धा और प्रेम होता है वह भगवान के स्वरूप को विशेष करके आकर्षण कर सकता है। इसलिए ये बात बतलाई गई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगत होय में जाना, हरि सर्वजन के वहाँ समान भाव से व्यापक है और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। तो इससे ये समझना चाहिए अपने हृदय के बीच के वहाँ समझो कि भाव की वृद्धि करनी चाहिए। भाव क्या कि श्रद्धा जो है वो भाव है। श्रद्धा किसका नाम है कि समझो कि विश्वास का नाम, जो भक्ति पूर्वक जो विश्वास है उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा के लायक संसार के बीच के वहाँ एक तो सबसे बढ़कर तो परमात्मा है, और दूसरे नंबर के बीच के माँ महात्मा लोग है, और तीसरे नंबर के बीच के माँ मरने के बाद के बीच के माँ भी समझो कि परलोक है, अपनी आत्मा कायम है, शरीर के नाश होने पर भी आत्मा समझो कि रहे है। ये जो आत्मा में जो विश्वास है ये एक प्रकार से समझो कि श्रद्धा है, ये भी श्रद्धा के लिए योग्य है। और चौथी बात जो शास्त्रों के वहाँ जो विश्वास है, तो ये चार जो स्थान है श्रद्धा के योग है, एक तो परमात्मा और एक महात्मा और एक अपनी आत्मा और एक शास्त्र, ये सभी विश्वास के पात्र हैं, श्रद्धा के पात्र हैं, इनके वहाँ श्रद्धा करनी चाहिए। तो ये श्रद्धा करना ये भाव है, ये भाव जितना ऊंचा होता है उतने ही जल्दी समझो इसका कल्याण हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए अपने भाव को बढ़ाने के लिए, भाव बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे शरीर के भीतर में मैंने आपको बताया कि एक प्रकार से थी समझो कि आपने शब्द है तो सुनाई देता है सूक्ष्म रूप से थी, जैसे कोई सूक्ष्म रूप से मशीन चले और उस मशीन के माध्यम से शब्द सुनाई दे रहे, इसी प्रकार का ठीक जो शब्द अपने हृदय के वहां सुनाई देता है, ये सुनकर के देखा गया है। और उसके साथ के वहां हम भगवान के नाम का जैन कर देने, कोई भी नाम हो जो दो अक्षर का होना चाहिए, छोटा ना होना चाहिए, जिससे हमारी जो नारी है और नारी का जो एक खटका जो होता है, बस इतने ही समय के बीच के माँ वो कानों के माँ समझो कि नारी के खटके के साथ वो शब्द होता है। तो नारी के खटके के साथ में चाहे आप समझो कि राम 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 शब्द जोड़ दो या शिव शब्द या ओम शब्द जोड़ दो, और चाहे उसे कानों के माँ सुनाई देने वाले शब्द के साथ में एक प्रकार से आप परमात्मा का नाम जो उसके साथ में जो कर दो, तो ठीक वही नाम आपको सुनेगा। तो ऐसा जो एक प्रकार का जो भजन है कि नारी के द्वारा भजन करना, यानी नारी के द्वारा होने वाले भजन के मां भावना करनी, उसके मां श्रद्धा और विश्वास करना, ये श्रद्धा विश्वास बहुत दामी चीज है। इसी प्रकार से थी जो एक प्रकार से हमारा जो श्वास चलता है, उस श्वास के साथ में भगवान के नाम का जो कर देना, ये हमारे कानों के वहां जो शब्द सुनाई देता है उसके साथ में उनसे भगवान के नाम का संयोग कर देना, इस प्रकार को उसको सुनते रहना, ये एक प्रकार का समझो कि अजपा जाप है। जब अपने आप ही हो रहा है, उसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो अपने आप से हो ही रहा है। यदि उसकी तरफ हम ध्यान दें तो उससे हमारा कल्याण हो सकता है, और यदि हम ध्यान नहीं दे रहे तो वो स्वाभाविक ही समझौती होता ही रहता है। ये गंगा जी का जो प्रवाह जो बहता है, एक तार बराबर गंगा का प्रवाह बहता है, और ये गंगा जी का इतना जो पवित्र शुद्ध और मीठा जल समुद्र के वहां जाकर के गिरता है, और समुद्र के जल में जाकर के जल में जल गिर जाता है, उससे कोई हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होती। और इसी गंगा जी के जल को हम एक प्रकार से थी काम में लावे, कोई बांध बांध देवे और उस जल को ऊंचा ले जाकर के और खेतों के मां इसका समझो कि नाला खोल देवे, तो उससे खेती होकर के और हमको उससे बड़ा भारी लाभ मिल सकता है। तो इसी प्रकार से थी गंगा के प्रवाह की जो समझो कि हमारे कान के बीच के मां अनंत शब्द की ध्वनि सुनाई देती है, उस ध्वनि से हम लाभ उठावे तो परमात्मा की प्राप्ति तक हमको लाभ हो सकता है, और नहीं तो वो स्वाभाविक ही हर वक्त ऐसे चलता ही है, जैसे गंगा का जल जो है समुद्र में स्वाभाविक ही जाता है, उससे कोई लाभ तो होता नहीं, और समझो कि वो जल है तो ऐसे ही आपने व्यर्थ चला जाता है। ऐसे ही हमारे कानों के भीतर के वहां जो शब्द सुनाई देता है वो व्यर्थ का ही चला जाता है, और यदि उससे हम लाभ उठाएं, उसके वहां हम भावना कर ले तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हमको हो सकती है। इसी प्रकार से थी और विषय में समझना से ही जैसे भगवान की मूर्ति है और उस मूर्ति के बीच के वहां हम भगवान की भावना कर ले तो उस मूर्ति के दर्शन से थी हमको बड़ी प्रसन्नता और शांति मिलती है, और उसको पत्थर समझें तो उससे कोई हमारे को लाभ नहीं होता। इसी प्रकार से थी जो एक महात्मा पुरुष है और उस महात्मा को हम महात्मा समझें तो महात्मा के जो गुण है उनकी स्मृति हो जाती है कि महात्मा में ये गुण होते हैं, और उस प्रकार की स्मृति होने से उनका हमारे ऊपर असर पड़ता है, हमारे उसके संस्कार पड़ते हैं, संस्कार पड़ने से आगे जाकर के हम भी महात्मा बन सकते हैं। हम देखते हैं कि महात्मा में कैसे गुण होते हैं तो हम पढ़ते हैं पुस्तकों के बीच के मां उनके ये लक्षण बतलाए गए हैं महात्माओं के। अदृष्टा प्रभूता नाम मैत्र करुण एवं च निर्ममो निरहंकार है सम दुख है सुख है क्षमी संतुष्ट है सततंग योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान कहते हैं कि यो मद भक्त समय प्रिय, गीता की 12वीं अध्याय के ये 13 और 14 के श्लोक हैं। ان کا یہ ارتھ ہے, یہ بھاو ہے کہ بھگوان کہتے ہیں کہ ایسا جو پرش ہے وہ میرا بھکت مجھ کو پیارا ہے. کیسا کہ جو سارے پرانیوں میں چراچر جو پرانی ہیں ان سب کے بیچ کے ماں جو ہے جو دویش بھاو سے رہت ہے, کسی میں دویش نہیں ہے. جب دویش نہیں ہے تو دویش نہیں ہونے کے کارن سے تھی, جہاں دویش ہوتا ہے نا وہیں بیر ہوتا ہے, جہاں دویش ہوتا ہے وہیں کرودھ ہوتا ہے, اور جہاں دویش ہوتا ہے وہیں بھے ہوتا ہے, اور جہاں دویش ہے وہیں ایرکھا ہوتی ہے, جہاں دویش ہے وہیں دکھ ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے. انیک سمجھو کہ اس وجہ کے بیچ کے وہاں یہ دوست آ کر پراپت ہو جاتے ہیں, اور دویش کے ناش سے بھی ان سب کا وناش ہو جاتا ہے. جو مہاتما جو پرش ہوتے ہیں وہ شدھ ہوتے ہیں, ان کا انتقال صاف ہوتا ہے, ان کا کسی کے وہاں بھی دویش نہیں ہوتا. دوسری بات ہے میتر, بھگوان کا سب کے وہاں میتر بھاؤ ہوتا ہے, مانے متر بھاؤ ہے جس کو میتر کہتے ہیں. یہ بھی ایک بھاؤ ہے, جیسے اپنے پیارے متر کے ماں جو بھاؤنا ہوتی ہے ایسی بھاؤنا ہوتی ہے. کنتو متر کے ماں جو یہ بدھی ہوتی ہے کہ یہ میرا ہے, اور اس پرکار کو لے کر کے سمجھو کہ کوئی سواس کو لے کر کے پرسپر کے ماں ایک دوسرے کے ساتھ میں جو مترتا کا سوارتھ ہے, اس پرکار کے سوارتھ کو دے کر کے مہاتماؤں کی مترتا نہیں ہوتی. وہ مہاتماؤں کی جو مترتا ہوتی ہے وہ نشکام مترتا ہوتی ہے, ہیتو رہت مترتا ہوتی ہے. تو ایسا جو ایک پرکار سے سب کے بیچ کے ماں جو ہیتو رہت پریم ہے وہ اتکوٹی کی چیز ہے. بھگوان ہے وہ سب کے بیچ کے ماں ہیتو رہت پریم کرتے ہیں, اور کے مہاتما لوگ ہے سب کرتے ہیں. ہم لوگوں کو جو یہ منش کا شریر جو ملا یہ بھگوان کی کرپا سے اور بھگوان کے سدے کے کارن سے ملا. تلسی داس جی کہتے ہیں کہ کبھو کے کاری کرونا نر دیگی دیتا عیسی بن تو سنے. یہ جیو چوراسی راجیونیوں میں بھرمن کرتا پھرتا ہے, اور اس کو دکھی دے کر کے دیالو بھگوان, پریمی بھگوان, بنا ہی کارن سے دیا اور پریم کرنے والے بھگوان اس کو منش کا شریر دے دیتے. جیسے بھگوان کے ماں ہیتو ریت دیا اور پریم ہوتا ہے, اسی پرکار سے بھگوان کے بھکت میں آپ دیکھیے سنگ بھگوان نے یہ بات کہی گیتا کی سمجھو کہ پانچویں دھیان کے انت میں, سریدنسر بھوتا نام جاتوا مانگ شانتی مریچتی. بھگوان کہتے ہیں کہ میں سب کا سرد ہوں. سرد کا مطلب ہے کہ ہیتو رہت دیالو اور ہیتو رہت پریمی, اپنا کوئی سوارتھ نہیں, کوئی ہیتو نہیں, اور جو اپنے دیا کرے اور پریم کرے اس کو سرد کہتے ہیں. جو پرسپر میں ایک دوسرے کے ساتھ میں پریم کرے اس کو تو کہتے ہیں متر, اور جو بنا ہی کارن دیا اور پریم کرے اس پرکار سے اس کو کہتے ہیں سورج. تو سنسار کے بیچ کے ماں دو ہی ایسے پرش ہیں جو ہیتو رہت سمجھو کہ دیا اور پریم کرنے والے, باقی تو سب سواس کی منوار ہے. جیسے رامائن میں کہا ہے سوار سکل جگ مائی سپنے ہو پرو پر مارت نائی. پرجا جو ہے بھگوان کو کہہ رہی ہے تلسیکرت رامائن کے اتر کانڈ کے بیچ کے ماں, اور وہ سب کوئی اپنے سواس کے متر ہیں. سمجھو کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو پرماتم کو لے کر کے مترتا کرے, تو کوئی بھی نہیں. سب کہتے ہیں کہ دو ہے, ہیتو رہت جگ جوگ اوپکاری تمہیں تمہار سیوک है कहे सुरारी छेनाथ छे अकबरी हेतु रही थे समझो कि उपकार करने वाला प्रेम करने वाला हेतु रही दया करने वाला या तो आप हो या आपका भक्त है तो ये भक्तों के लक्षणों में ये बात बतलाई जा रही है भक्त जो है उसका अनुयायी जो है वो भगवान के जैसा ही बन जाता है क्योंकि भगवान ने ये बात कही कि जो मुझ परमात्मा को सुरिंद समझ लेता है वो शांति को प्राप्त होता है शांति को कहते हैं कि वो भी सुरिंद बन जाता है भगवान सुरिंद है इस माफक समझने से और भगवान का उस पर असर होता है उसमें सुरिंदता का भाव जागृत हो जाता है वो भी सुरिंद सो बन जाता है सुरिंद का मतलब है कि समझो कि आप दयालु और प्रेमी कैसा दयालु और प्रेमी हेतु रहित दया करने वाला और हेतु रहित प्रेम करने वाला बन जाता है भगवान ऐसे हैं जब हम ऐसा ध्यान करते हैं ख्याल करते हैं कि भगवान जो है तो तुम जो बड़े दयालु हैं और बिना ही कारण दया करने वाले हैं भगवान बड़े प्रेमी हैं बिना ही कारण से प्रेम करने वाले हैं तो उस भगवान की दया का जो भाव है भगवान के प्रेम का जो भाव है उसे का समझो कि उसके ऊपर असर पड़ता है इस कारण से उसमें दया और प्रेम प्रवेश हो जाते हैं प्रवेश कर जाते हैं तो वो एक प्रकार से परम दयालु और परम प्रेमी बन जाता है इसलिए भगवान कहते हैं कि भी ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्यारा है इस बात को समझाने के वास्ते समझो कि ये श्लोक भगवान कह रहे हैं कि अदृष्टा सर्वभूता नाम और मैत्र करुण एवं चौ जो ऐसा पुरुष है कि माने जिसका किसी में द्वेष नहीं उसको कहते हैं अदृष्टा सर्वभूता नाम और मैत्र के जिसकी आपने मित्रता है यानी प्रेम भाव है सबके ऊपर जिनका प्रेम है हेतु रहित प्रेम है उसको समझो कि मैत्र कहते हैं और करुण माने दया जो सबके ऊपर दया करने वाला है बिना ही कारण सबके ऊपर दया करने वाला है ऐसा जो पुरुष है वो भगवान का भक्त है निर्ममो निरहंकार है सम दुख है सुख है सभी दीदी कहो हेतु रहित की बात तो यहाँ नहीं कही बोलो कही निर्ममो जो ममता रहित है माता का जो अपने पुत्र पर प्रेम भी होता है उसके ऊपर दया भी होती है किंतु हेतु लेकर के कि ये मेरा लड़का है ऐसे गाय जो है उसका बाछे के ऊपर प्रेम भी होता है और दया भी होती है वो जो प्रेम है वो स्नेह है वो हेतु ने लेकर के अपने बाछे पर होता है दूसरे पर नहीं तो इस प्रकार से थी महात्माओं में ये बात नहीं महात्माओं के मेरा और पराया नहीं है इसलिए एक प्रकार से उनका जो सबके माँ जो प्रेम है वो हेतु रहित प्रेम है उनकी जो सब पर दया है वो हेतु रहित दया है निर्ममो निरहंकार है महात्माओं के माँ ममता नहीं होती कि यो मेरा और यो मेरा नहीं उनके सब समान है और निरहंकार ऐसा होने पर भी ये अभिमान नहीं आता कि भी मैं एक प्रकार से हेतु रहित दया और प्रेम करने वाला हूँ मैं ऐसा हूँ इस प्रकार का उसमें अहंकार नहीं रहता जैसे साधारण अज्ञानी आदमियों में रहता है महात्मा में ऐसा अहंकार नहीं रहता उनमें बिल्कुल ही अहंकार नहीं रहता असम दुख है सुख है समी सुख की प्राप्ति में और दुख की प्राप्ति में वे सम रहते हैं क्यों वे समझते हैं कि संसारिक सुख है वो तो सुख नहीं है और दुख है वो सुख नहीं है जैसे स्वप्न के बीच के माँ मनुष्य को सुख और दुख होता है तो जागने के बाद उस सपने वाले सुख दुख में वो समान हो जाता है यानी उसका जैसा ही सुख वैसा ही दुख वास्तव में वो सुख सुख नहीं है दुख दुख नहीं है इसी प्रकार से थी समझो कि वो सुख और दुख में समान हो जाता है महात्मा जो है उसके दोनों ही समान होते हैं सुख और दुख निर्ममो निहंकार है सम दुख है सुख है क्षमी और क्षमी वो क्षमामान होता है क्षमा का भाव प्रतीत होता है कोई क्षमा کرنے والا کوئی دھرم ہی نہیں رہتا. مطلب یہ ہے کوئی اس کا انشٹ کرے, اس کا کوئی برا کرے, وکار کرے, تو وہ بدلہ نہیں چاہتا, وہ بدلہ نہیں چاہتا, کیوں وہ سب کے ہت میں رہتا ہے کہ جیسے اپنا جو دیہ ہے, شریر ہے, اپنے شریر میں کبھی غلطی سے اپنے دانتوں سے اپنی جیب کٹ جاتی ہے, تو جیب کٹ جاتی ہے تو ہم دانتوں کے اوپر کروٹ کر کے اس کو توڑتے نہیں, سمجھتے ہیں کہ اب تو جیب کا درد ہے اور دانتوں کو توڑ ڈالیں گے تو وہاں بھی پھر اور ڈبل درد ہو جائے گا. یہ سوچ کر سمجھتے ہیں کہ دانت بھی میرے اور